आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। कई देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी शरण चाहने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वीजा है। इसके लिए वैध वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आना होता है और आगमन पर इमिग्रेशन क्लियर होना चाहिए। सुरक्षा वीजा यानी प्रोटेक्शन वीजा ऐसे व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है जिसे अपने देश में गंभीर नुकसान या उत्पीड़न का वास्तविक खतरा है। इस वीजा के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहा जा सकता है, काम किया जा सकता है और अध्ययन भी किया जा सकता है। ऑफशोर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम से स्थायी निवास के लिए परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा वीजा उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा वीजा प्रणाली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहने के झूठे दावे करते हैं। पिछले साल सरकार ने इस स्थिति की पहचान की, आवेदनों की अधिक जांच और झूठे दावों के लिए दंड भी। समुदाय के नेताओं और संगठनों को सुरक्षा वीजा प्रणाली में बदलावों के बारे में बताने के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। और ये क्या हैं, इसी संबंध में बात की है कम्युनिटी एम्बेसडर हरप्रीत कांडा के साथ।
नमस्कार अनीता जी, आपका और SBS हिंदी का और SBS सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आपने चर्चा स्टार्ट की है, तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मिडल ऑफ लास्ट ईयर में पोलोरॉन सर्विसेज को, लैंग्वेज सर्विसेज को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें मैंडेट ये था कि जो प्रोटेक्शन वीजाज हैं उनके बारे में कम्युनिटी में ज्यादा अवेयरनेस बिल्ड की जाए। उस प्रोग्राम में पोलोरॉन लैंग्वेज सर्विसेज ने डिफरेंट कम्युनिटीज को, डिफरेंट हेरिटेज की कम्युनिटीज के कुछ कम्युनिटी एम्बेसडर्स को ट्रेन किया, गाइड किया कि हम अपनी कम्युनिटी में इस चीज के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग जो वीजा के लिए स्ट्रगल करते हैं, अक्सर उन्हें मिसगाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में समझें तो प्रोटेक्शन वीजा डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में यह कहा जाता है, वन शुड अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन वीजा ओनली इफ दे बिलीव दैट दे हैव सिग्निफिकेंट रिस्क और हार्म और पर्सिक्यूशन बाय रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री। जिसका मतलब है कि अगर किसी को ये डर है, उनकी जान को, उनकी फैमिली को खतरा है अगर वो अपने देश में वापस जाते हैं, तो वो प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि किसी का वीजा एक्सपायर हो रहा है, उसका दिल ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए और करता है जो इलीगल है, तो वो उनको मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई कर दें। अब प्रोटेक्शन वीजा के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो पास्ट में ये था, प्रोटेक्शन वीजा की एप्लीकेशंस को प्रोसेस होने में बहुत समय लगता था, बट अभी डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के प्रोसेसेस काफी इंप्रूव हो गए हैं और वो काफी फास्ट स्पीड पर प्रोटेक्शन वीजाज को प्रोसेस कर रहे हैं। और आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए नवंबर 2024 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वीजाज की एप्लीकेशन जो है वो इंडियन हेरिटेज के की कम्युनिटी से आई हैं और उन एप्लीकेशंस में से सिर्फ 0.7% एप्लीकेशंस ही सक्सेसफुल हुई। 0.7% मींस लेस देन 1%। तो इस सारी चीजों से ये हो रहा है कि जिसने प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई किया पहले, तो उसने एक अनएथिकल अप्रोच फॉलो की, जिस वीजा के लिए वो एलिजिबल नहीं है उन्होंने अप्लाई किया। जब वो अप्लाई कर दिया तो डिपार्टमेंट के लिए हमने काम इंक्रीज कर दिया, और जब डिपार्टमेंट के लिए हम काम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका दूसरे वीजाज पे इफेक्ट होता है। अगर हमारी इंडियन कम्युनिटी के लोग प्रोटेक्शन वीजाज बहुत अप्लाई करेंगे और सक्सेस रेट सिर्फ 0.7% के करीब होगा या 1% के करीब होगा, तो क्या होगा कि इंडियन एप्लीकेशंस जो हैं, जेन्युइन एप्लीकेशंस, उनकी प्रोसेसिंग टाइम पर भी फर्क पड़ सकता है, हमारी कम्युनिटी की इमेज पर भी इफेक्ट होगा। और जो प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको जब प्रोटेक्शन वीजा डिक्लाइन हो जाता है, उसको इमिजिएटली कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको फाइन भी लग सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, और बाद में वो या उसकी फैमिली का कोई सदस्य फ्यूचर में प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो उनके चांसेस भी मैसिवली इफेक्ट होंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, एक प्रोटेक्शन वीजा के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो उसको एक एक अच्छा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट कभी भी नहीं सजेस्ट करेगा प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई करो, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो वो कहीं पर $10,000-20,000 दे के प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई कर देगा और उसके वो सारे पैसे भी जाया होंगे। अक्सर जो डॉजी ऑपरेटर्स हैं वो एप्लीकेंट्स को ये कहते हैं, आप प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई कर दो, सरकार तो 2-3 साल में प्रोसेस करेगी, 2-3 साल आप काम करो आराम से और आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन ये सारे मिथ्स हैं, प्रोसेस काफी चेंज हो गया, गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है, बहुत केयरफुल स्क्रूटनी होती है, और इसीलिए जो आप सक्सेस रेट देख रहे हैं वो 1% से कम, अबाउट 0.7% ही था नवंबर 2024 में। तो जब मेरे को इस चीज के बारे में ट्रेनिंग मिली तो मैंने ये सोचा कि हमें इस मैटर के ऊपर कम्युनिटी में और अवेयरनेस बिल्ड करनी चाहिए।
अब आंकड़े रेखांकित करते हैं कि 90% से अधिक आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की दिसंबर माह की मंथली अपडेट के अनुसार ऑनशोर प्रोटेक्शन वीजा लॉजमेंट्स 1,784 थे और इसमें दूसरे नंबर पर भारत के 193 लॉजमेंट्स थे। इसी महीने के दौरान 5 से भी कम लोगों को प्रोटेक्शन वीजा मिला और इसी दौरान 324 प्रोटेक्शन वीजा लॉजमेंट्स को अस्वीकार किया गया, यानी उन्हें फाइनल प्रोटेक्शन वीजा नहीं दिया गया। और ये वीजा अस्वीकार किए जाने वाली लिस्ट में भारत का नंबर सबसे ऊपर है। अब यूं हमारे इमिग्रेशन एजेंट्स और वकील आवेदन प्रक्रियाओं की जटिलताओं से निपटने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस विषय में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट सुरेंद्र थीमापुरम बताते हैं। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेक्शन वीजा का गलत फायदा उठाया जा रहा है, और हम जानना चाह रहे थे कि माइग्रेशन एजेंट इस बारे में क्या कहते हैं। सुरेंद्र थीमापुरम ने बताया।
देखो, बच्चों को क्या है, गलत एडवाइस दे रहे अनरजिस्टर्ड माइग्रेशन जो एजेंट्स जो है मार्केट में, तो लोगों को गलत एडवाइस दे रहे कि प्रोटेक्शन वीजा डाल दो, आपको टाइम मिल जाएगा एंड ऑल। तो बेसिकली प्रोटेक्शन वीजा के लिए द रिक्वायरमेंट्स अलग है, उन लोगों को जेन्यून थ्रेट है एंड जेन्यूनली वो अपना देश नहीं जा सकते, उन लोगों को थोड़ा पॉसिबिलिटी है। बट अभी टाइम बाइंग के लिए लोगों को वो एडवाइस दे रहे वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखो, स्टूडेंट वीजा नहीं डाल सकते आप विजिटर वीजा पे आए तो, नहीं तो आप TR खत्म हो रहे, समझो 485 वीजा, और दूसरा ऑप्शंस खत्म हो गए, तो उन लोगों को ये एडवाइस दे रहे कि भाई प्रोटेक्शन एक है आप डाल लो। तो वो गलत रास्ते में ले जा रहे बच्चों को एंड वो उनका फ्यूचर खराब कर दे रहे, क्योंकि बच्चों को क्या है, PR मिल सकते हैं, इवन इंडिया गया तो भी, या कोई भी, या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री से है, वो वापस जाके भी PR ले सकते हैं। वो गलत एडवाइस की वजह से बच्चे यहाँ पे रुक के डाल रहे प्रोटेक्शन, विच इज नॉट एडवाइजेबल। सही वीजा डालना अच्छा है कभी भी, क्योंकि आजकल प्रोटेक्शन वीजा जो है जल्दी खुल रहा, ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा एंड आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके प्रोटेक्शन वीजा डाले तो आपको 3 साल का बैन लग सकता है वापस, आप कहीं कोई और वीजा नहीं डाल सकते जैसा, तो ये एडवाइजेबल नहीं है।
तो जब कोई माइग्रेशन एजेंट के पास आते हैं और उनको सलाह दे दी जाती है कि प्रोटेक्शन वीजा में चले जाएं, तो जो अप्लाई कर रहे हैं उनको किस चीज से ध्यान रखना चाहिए कि वो सही जगह पर हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
मेरा सलाह एक ही है, जो आपको बोल रहे कि प्रोटेक्शन वीजा डालो तो आप दूसरा एजेंट से भी एक बार सलाह लेना अच्छा है, क्योंकि एक ही बंदा से लिया तो वो गलत बोल रहे सही बोल रहे हमको पता नहीं चलता है ना। तो और एक जो अच्छा माइग्रेशन एजेंट, जो जो रिप्यूटेड माइग्रेशन एजेंट होगा, उनके पास भी जाके सलाह लेना अच्छा है। द मेन थिंग इज बच्चे देखना है कि वो वीजा डाले, जब माइग्रेशन एजेंट जो वीजा डाल रहे वो माइग्रेशन एजेंट के पोर्टल से डाल रहे कि स्टूडेंट डाले जैसे डाल रहे, क्योंकि वो जो प्रोटेक्शन वीजा डाल रहे एजेंट्स अपना पोर्टल से नहीं डाल रहे मेरे हिसाब से। कोई बच्चे डाले जैसे बच्चों का यूजर नेम वैसा करके डाल रहे ताकि वो उसका नाम बाहर ना आए जैसा, तो आप उसका बाहर नाम बाहर नहीं आने दे रहे बोले तो वो सही काम नहीं है। सही काम है तो क्यों अपना पोर्टल में नहीं डालेगा एजेंट्स, है ना।
तो बहुत ध्यान रखना चाहिए।
तो मोस्ट ऑफ द जेन्यून माइग्रेशन एजेंट्स या जेन्यून लॉयर्स जो है वो ये काम नहीं करेगा, जो जो भी ये काम कर रहे अपने नाम बाहर नहीं आने देते ताकि उनका पता नहीं चलेगा कि ये डाल दिया वीजा है ना। तो वो एक प्रॉब्लम अभी भी है मेरे पास, जो भी बच्चे आते हैं और हमारा कोलिप्स का भी सुनते हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये प्रोटेक्शन वीजा डालना नहीं है, हमारा एजेंट डाल दिया जैसा, तो बच्चों को ये पता भी नहीं चलता कि ये क्या वीजा है।
कोई और भी बात है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए?
एक ही चीज जो है ना, सेकेंड ओपिनियन लेना जरूरी है और उसका प्रोफाइल असेस करना जरूरी है, लीगली डॉक्यूमेंटेशन रखना है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दे प्रूफ दैट दिस माइग्रेशन एजेंट मिसगाइडेड और दिस लॉयर मिसगाइडेड जैसा ना, पूरा पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगा है ना। मोस्ट ऑफ द ये जो भी काम कर रहे हैं ना वो लोग प्रूफ्स नहीं रहे जैसा देख लेते।
महत्वपूर्ण ये है कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब कोई प्रोटेक्शन वीजा के लिए आवेदन करता है, तो यदि कोई उस देश की यात्रा करता है जहां से वो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा चाहते हैं, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, भले ही उनका परिवार वहां रहता हो। इसी तरह यदि प्रोटेक्शन वीजा दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार की अनुमति के बिना उस देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे जहां से शरण मांगी गई है, भले ही परिवार के सदस्य वहां रहते हों। और हरप्रीत जी एक और बात याद दिलाते हैं।
कभी कभी जो प्रोटेक्शन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं वो कभी अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि हमें एक सपोर्टिंग लेटर दीजिए। तो आई थिंक हमारे एज रिस्पॉन्सिबल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी किसी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह परखे बिना लेटर ऑफ सपोर्ट ना इशू करें, बिकॉज उससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट होती है और पूरे प्रोसेस को भी जो 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 एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस बनाया है वो भी अफेक्ट होता है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा वीजा प्रणाली का फायदा उठाने की कोशिश ना की जाए और ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए झूठे दावे भी ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ अपना बल्कि उन लोगों का भी नुकसान होता है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।